8 नवंबर गुरुवार दिनभर में स्वागत है आपका। मैं हूं फैसल मोहम्मद अली। अमेरिकी शहर कैलिफोर्निया के एक नाइट क्लब में गोलीबारी, 13 की मौत।
I heard the gunshot. I turned around and I saw him shoot a couple more times.
कहाँ है पाकिस्तानी ईसाई महिला आसिया बीबी? खबर है कि वो किसी यूरोपीय देश में है, लेकिन पाकिस्तान सरकार इसे गलत बता रही। दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट का पटाखों पर बैन रहा कितना कारगर?
केवल पीसो सर्टिफाइड या ग्रीन क्रैकर ही चलाने थे और केवल 8 से 10 के बीच ही चलाने थे, तो इसलिए कुल मिला के ये 634 FIR दर्ज करेगी, जिनमें 398 के करीब लोग गिरफ्तार करके बेल आउट किए थे।
सुनवाएंगे एक रिपोर्ट, साथ ही देंगे आपके खतों का जवाब और खबरें खेल जगत से भी। लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कमलेश मठेनी से। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बंदूकधारी ने भीड़भाड़ वाले बार में गोलियां चलाकर कम से कम 13 लोगों की जान ले ली है। मरने वालों में एक पुलिस सार्जेंट भी शामिल है, जो गोलीबारी की सूचना मिलने पर वहां पहुंचे थे। इस घटना में एक दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि थाउजेंड ओक्स इलाके में हुई इस घटना को अंजाम देने वाला संदिग्ध हमलावर भी मृत मिला है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में संदिग्ध माओवादी हमले में 4 नागरिकों और एक CISF जवान की मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि ये मौतें एक बस में IED से हुए धमाके के कारण हुई। हमले में CISF के 2 जवान भी जख्मी हुए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस को बर्खास्त किए जाने के बाद इस बात को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं कि अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूसी दखल को लेकर चल रही जांच का क्या होगा। जब से सेशंस ने खुद को रॉबर्ट मुलर के नेतृत्व में हो रही जांच से अलग किया था, तभी से ट्रंप उनकी आलोचना कर रहे थे। सेशंस की जगह अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए मैथ्यू विटाकर ने पहले कहा था कि इस जांच की फंडिंग कम की जा सकती है। सीनेट में डेमोक्रेट्स के नेता चक शूमक ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि वो जांच में दखल ना दें। भारत की राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में जहरीली धुंध के कारण विजिबिलिटी कम हुई है और लोगों की सेहत को लेकर भी कई चिंताएं खड़ी हो गई हैं। दिल्ली में अमरीकी दूतावास की ओर से जारी किए गए डेटा के अनुसार प्रदूषण का स्तर सामान्य से 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिवाली की रात को पटाखे छोड़े गए, जिससे हालात और ख़राब हो गए। ग्रीन पीस इंडिया के सीनियर कैंपेन सुनील दहिया ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को और कदम उठाने चाहिए।
The government or the environment ministry or state governments are the guardians of air and
सरकार या फिर पर्यावरण मंत्री और राज्य सरकारों पर हवा और पर्यावरण की रखवाली की जिम्मेदारी बनती है, मगर उन्होंने पिछले एक साल से कुछ नहीं किया है। वे बस तभी जागते हैं जब मीडिया में इस विषय पर बहस उठती है, प्रदूषण साफ नजर आने लगता है या फिर लोग कड़े सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। ये थे ग्रीन पीस इंडिया के सीनियर कैंपेन सुनील दहिया के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। पाकिस्तानी अधिकारियों ने मीडिया की उन रिपोर्टों को खारिज किया है जिनमें कहा जा रहा है कि हाल ही में ईश निंदा के मामले में रिहा की गई ईसाई महिला आसिया बीबी देश छोड़ चुकी हैं। आसिया बीबी मौत की सजा सुनाए जाने के बाद 8 साल तक जेल में बंद थी, मगर पिछले सप्ताह पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलट दिया था। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन उनकी रिहाई का विरोध कर रहे हैं। आसिया बीबी का केस लड़ने वाले वकील सैफुल मुलक को नीदरलैंड में अस्थायी रूप से शरण मिली है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैजल ने इस्लामाबाद में कहा कि आसिया अभी भी पाकिस्तान में है।
Let me state clearly that Asia Bibi remains at a safe place in Pakistan.
मैं साफ कर दूं कि आसिया बीबी पाकिस्तान में एक सुरक्षित जगह पर हैं। मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि इस तरह की खबरें देने से पहले उसकी पुष्टि कर लें। तटस्थ पत्रकारिता के मानकों का सम्मान कीजिए ताकि बिना मतलब की सनसनी और विवाद को हवा ना मिले। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैजल के शब्द। फलस्तीनी सूत्रों का कहना है कि मिस्र की नौसेना ने गजा के एक मछुआरे की गोली मारकर जान ले ली है। गजा के आंतरिक मंत्रालय के इस दावे को मिस्र की सेना के एक सूत्र ने खारिज किया है, मगर यह नहीं बताया कि घटना कैसे हुई होगी। मिस्र की नौसेना ने पहले भी उसकी समुद्री सीमा में घुसपैठ के संदेह में गजा के जहाजों पर गोलियां चलाई हैं। BBC समाचार।
BBC हिंदी की शाम की सभा दिन भर में स्वागत है आपका। एक बार फिर से میں ہوں فیصل محمد علی اور سب سے پہلے خبر کی شروعات امریکہ کے کیلیفورنیا سے، جہاں ہوئی ایک گولی باری میں کم سے کم 13 لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ بہت سارے لوگ گھائل ہوئے ہیں۔ ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ پولیس سے ہوئی بھڑنت میں حملہ ور بھی مارا گیا۔ لاس انجلس سے قریب 65 کلومیٹر دور بسے کیلیفورنیا میں یہ حملہ بدھوار رات تقریباً 11 بجے کے آس پاس ہوا۔ اس وقت بار میں تقریباً 200 لوگ موجود تھے۔ حملہ اس وقت ہوا جب نائٹ کلب میں چھاتر چھاتراؤں کی ایک پارٹی چل رہی تھی۔ سلیم رضوی کی رپورٹ۔
کیلیفورنیا کا 1000 اوکس علاقہ لاس اینجلس شہر سے کوئی 40 میل دور پڑتا ہے۔ بدھوار کی رات بارڈر لائن بار اینڈ گرل نائٹ کلب میں کنٹری میوزک کا ایک اتسو جاری تھا جس میں 200 سے ادھک چھاتر چھاترائیں موجود تھے۔ ایسے میں 11:30 بجے کے آس پاس کالے رنگ کا ماسک پہنے ہوئے ایک حملہور نے بندوق سے گولیاں چلانی شروع کر دیں۔ پولیس اور پرتیکش درشیوں کے انوسار سب سے پہلے حملہور نے نائٹ کلب کے سیکورٹی گارڈ پر گولی چلائی، پھر بار کاؤنٹر پر کھڑی ایک کرمچاری کو گولی ماری۔ ٹیلر وٹلر نام کی ایک نوجوان چھاترا گولی باری کے سمے نائٹ کلب میں موجود تھی اور کسی طرح وہاں سے بچ کر نکلنے میں کامیاب رہیں۔ میں نے گولی چلنے کی آواز سنی تو میں پلٹی اور دیکھا حملہور گولیاں چلا رہا ہے اور سب چیخ رہے تھے نیچے ہو جاؤ۔ میں نزدیک کے دروازے کی اور بھاگی۔ لوگ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حملے کے دوران حملہور نے سموک گرینیڈ کا استعمال بھی کیا اور اندھا دھند گولیاں چلائیں۔ نائٹ کلب کی عمارت سے باہر نکلنے کے لیے بہت سے لوگ کھڑکیوں کے شیشے توڑ کر باہر نکلے اور کچھ لوگوں نے ٹوائلٹ میں چھپ کر جان بچائی۔ اب تک 12 لوگوں کے مارے جانے کی پشٹی ہوئی ہے جن میں 11 چھاتر اور ایک پولیس ادھیکاری شامل ہیں۔ حملہور بھی نائٹ کلب کے اندر ہی مرت پایا گیا۔ حملے میں 15 سے زیادہ لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں۔ وینٹیورا کاؤنٹی کے شریف جیف ڈین گولی باری کے حملے کے بارے میں کہتے ہیں، وہاں بہت ہی بھیاوہ منظر تھا۔ جب پولیس کے ادھیکاری نائٹ کلب کے اندر گئے تو حملہور تو مر چکا تھا، لیکن بہت ہی بھیاوہ منظر تھا۔ وہاں 11 لوگوں کی گولی سے چھلنی لاشیں تھیں اور ہمارے ایک پولیس سارجنٹ رون ہیلوز بھی اس گولی باری میں مارے گئے۔ شریف ڈین نے بتایا کہ مارے گئے پولیس ادھیکاری رون ہیلوز پچھلے 29 سال سے پولیس وبھاگ میں تھے اور وہ اس سمے گولی باری میں مارے گئے جب وہ ایک اور پولیس والے کے ساتھ حملہور کا مقابلہ کرنے کے لیے نائٹ کلب میں داخل ہوئے تھے۔ ابھی یہ نہیں پتا چلا ہے کہ اس حملے کے پیچھے کیا مقصد تھا۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
اس حملے کی جانچ کرنے والے پولیس ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ حملہور ایک 29 سال کا ایک ویکتی تھا جس نے سموک گرینیڈ کا استعمال کیا اور اس کے پاس ایک ہینڈ گن بھی تھی۔ پاکستان کی آسیہ بی بی کے ٹھہر ٹھکانے کو لے کر اسمنجس کی استھتی بنی ہوئی ہے۔ کچھ جگہوں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ چکی ہیں، حالانکہ عمران خان حکومت اس سے انکار کر رہا ہے۔ آسیہ بی بی ایک عیسائی مہیلا ہیں جنہیں ایش نندا کے آروپ میں 8 سال جیل میں کاٹنے پڑے تھے۔ پاکستان کے سپریم کورٹ نے پچھلے ہفتے یہ کیس کہتے ہوئے ختم کر دیا تھا کہ ان کے خلاف لگائے گئے سارے الزام بہت کمزور ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی اسلام آباد میں بی بی سی سنواداتا شہزاد ملک سے اور ان سے پوچھا کہ آخر آسیہ بی بی ہیں کہاں اور اس بات کو لے کر اتنا بھرم کیوں پھیلا ہوا ہے۔
جی فیصل صاحب، جب آسیہ بی بی کو جو مہیلاؤں کی جو جیل ہے ملتان میں، جب اس کو وہاں سے ایک اسپیشل پلین کے ذریعے لے جایا گیا تو وہاں کنفیوژن وہاں سے پھیلی ہے۔ جو وہاں پر جو سورسز تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پلین تھا اس میں آسیہ بی بی اور اس کی جو فیملی تھی جس میں اس کی 2 بیٹیاں اور ایک ان کا جو شوہر ہے وہ تھا، تو ان کو لے کے وہ نامعلوم مقام پر چلے گئے ہیں۔ جو آسیہ بی بی کے جو وکیل ہیں سیف الملوک، جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ اس میں ایک جو یورپین کنٹری ہے اس کا امبیسڈر بھی اس میں شامل تھا۔ وہ آفیشل جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کو اسلام آباد لے کے آئے ہیں۔ اگر وہ جیل میں تھی، اور جیل کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کافی محفوظ ٹھکانہ ہے جہاں پر کسی کو بھی رکھا جا سکتا ہے، اور اگر اس کو اسلام آباد لے کے آیا گیا ہے تو اس کو وہ کہاں پہ رکھا گیا ہے؟ کیونکہ اس کی جب یہ خبر ہم نے دی تو اس کے بعد فوری طور پر یہ اس کے گورنمنٹ کی طرف سے اس کا ڈینائل آ گیا، انہوں نے اس کی تردید کی کہ نہیں وہ پاکستان میں ہی ہے، لیکن وہ یہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ اگر وہ پاکستان میں ہے تو وہ کہاں پہ ہے۔
شہزاد ملک صاحب، یہاں یہی پوچھنا ہے کہ جب سپریم کورٹ نے آسیہ بی بی کو رہا کر دیا ہے، جو ایش نندا قانون تھا، جو بلاسفیمی لا ہے اس سے، تو آخر کس بات کا ڈر ہے کہ ان کے ٹھکانے کو اس طرح سے جو ہے وہ سیکریٹ یا گپت رکھا جا رہا ہے؟
یہی ایک بات ہے جس پہ آج جو پاکستان کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں، جو کہ گورنمنٹ کے سپوکس مین بھی ہوتے ہیں، انہوں نے آج اس بارے میں ایک میڈیا ٹاک کرنی تھی، لیکن جب وہ وقت آیا تو اچانک انہوں نے اس کو کینسل کر دیا۔ فارن آفس کا جو سپوکس پرسن ہے، انہوں نے اس پہ صرف یہی کہا کہ جو سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا اس پہ انہوں نے گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کیا ہے اور اس کو آسیہ بی بی کو انہوں نے رہا کر دیا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آسیہ بی بی ایک عام شہری ہیں، فری سٹیزن ہیں، اگر وہ باہر بھی جانا چاہیں तो वो जा सकती हैं। लेकिन अब जो आसिया बीबी के खिलाफ जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा कि जब तक उसकी रिव्यू पिटीशन उसको डिसाइड नहीं किया जाता तो उस वक्त तक आसिया बीबी जो है वो पाकिस्तान नहीं छोड़ सकती।
इमरान खान हुकूमत के लिए कितना मुश्किल मामला बन के उभरा है।
बड़ा ये सेंसिटिव और बड़ा हसास मामला है। अभी तक इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और जिसको लेके जो दीनी जमाते हैं उन्होंने इसको इसका एहतजाज किया था, प्रोटेस्ट किया था। अगर उनको ये बताते हैं कि वो आसिया बीबी जो है वो बाहर है तो वो जाहिर है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो। अगर से पाकिस्तान की जो मिलिट्री फोर्सेज हैं वो सारी इस बारे में और अपोजिशन पार्टी जो है वो इस बारे में गवर्नमेंट के साथ हैं।
यहाँ ये बता देना ज़रूरी है कि ईश निंदा कानून पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और सलमान तासीर नाम के गवर्नर की पहले हत्या की जा चुकी है उनके ही सुरक्षा गार्ड द्वारा। ईश निंदा कानून वो है जिसमें मुसलमानों के पैगंबर या उससे जुड़ी हुई किसी बात पर अगर निंदा की जाए या कोई ऐसी टिप्पणी की जाए जो कि अशोभनीय है।
दिन भर शॉर्ट वेव 49, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5,875, 9,510 और 11,995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब रुख करते हैं भारत का, सबसे पहले राजनीतिक खबर। पिछले हफ्ते दिल्ली में शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी और दूसरे नेताओं से मिलने के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू आज बेंगलुरु पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री देवी गौड़ा से मुलाकात की। गौड़ा जनता दल सेकुलर के अध्यक्ष हैं और उनकी पार्टी फिलहाल कांग्रेस के साथ कर्नाटक में सरकार में मौजूद है। पिछले हफ्ते दिल्ली की बैठक में यह तय हुआ था कि गैर बीजेपी गठबंधन की तैयारी के सिलसिले में चंद्रबाबू नायडू अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलने की पहल करेंगे। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की दोस्ती 22 साल पुरानी है। दोनों केंद्र की उस संयुक्त मोर्चा सरकार में थे जब नायडू संयुक्त मोर्चा के संयोजक थे। ऐसे में संभव है कि उनकी खास बैठक में नायडू और राहुल गांधी के बीच हुई बातचीत के बारे में भी चर्चा हुई होगी। लेकिन देवेगौड़ा ने उनके बयान में एक दिलचस्प बात बताई।
रीजनल लीडर शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, मायावती
आज नायडू जी आए हैं ताकि आने वाले दिनों की रणनीति के बारे में बात की जा सके, ताकि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाया जा सके। कांग्रेस पार्टी को भी अपना समर्थन देना चाहिए क्योंकि वो देश में एक बड़ी शक्ति है और उस पर देश को बचाने की बड़ी जिम्मेदारी भी है। ये थे एचडी देवेगौड़ा के शब्द। जब चंद्रबाबू नायडू से सवाल पूछा गया कि क्या वो देवेगौड़ा के उस बयान से सहमत हैं कि वो राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री पद के काबिल समझते हैं, तो उन्होंने कहा,
यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, वी आर इंटरेस्टेड टू प्रोटेक्ट दिस ग्रेट नेशन।
प्रधानमंत्री का पद कौन संभालेगा उस पर निर्णय बाद में लिया जाएगा, अभी के लिए हमारा मकसद जनतंत्र को बचाना है और देश को बचाना है। हाँ, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और आप इतिहास देखें तो ये स्पष्ट है कि जो भी गठबंधन सरकार बनी है वो कांग्रेस या बीजेपी के समर्थन से ही बनी है। आप मीडिया वालों को मसाले में दिलचस्पी है और हमें बीजेपी विरोध पक्षों में आम सहमति बनाने में। ये थे चंद्रबाबू नायडू के शब्द। नायडू डीएमके के नेता एमके स्टालिन से बात करने के लिए बेंगलुरु से चेन्नई निकल गए, तो जाहिर है कि कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के बीच सहमति बनाने में नायडू को काफी मशक्कत करनी होगी। सवाल ये है कि नायडू 1996 का इतिहास दोहरा पाएंगे या नहीं। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
भारतीय जनता पार्टी कहते रही है कि गठबंधन का लीडर कौन होगा इसी बात को लेकर सहमति नहीं बनेगी और गठबंधन एक तरह से बीरबल की खिचड़ी बनकर रह जाएगी। दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की बुधवार को खूब धज्जियां उड़ी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर एक बार फिर से खतरे के निशान के पार चले गए। प्रदूषण पर नजर रखने वाली संस्था सफर के मुताबिक इस बार दिवाली 2016 के मुकाबले कम प्रदूषण वाली थी, लेकिन 2017 के मुकाबले प्रदूषण कम हुआ। दिल्ली से हमारी संवाददाता सरोज सिंह की रिपोर्ट।
23 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने केवल 2 घंटे के लिए दिवाली पर पटाखे जलाने की इजाजत दी तो दिल्ली वालों को एक बार लगा कि दिल्ली में दिवाली के बाद की सुबह प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी दिवाली के बाद की सुबह प्रदूषण खतरे के निशान से पार था। सिस्टम ऑफ एयर एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर के मुताबिक दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स गुरुवार को 500 के ऊपर दर्ज किया गया। सफर की वेबसाइट पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक इस प्रदूषण के पीछे की वजह पराली जलाना नहीं है। जाहिर है ये प्रदूषण पटाखों की वजह से है। आंकड़ों के मुताबिक इस बार दिवाली बाद का प्रदूषण स्तर 2016 के मुकाबले कम था, लेकिन पिछले साल के मुकाबले ज्यादा रहा।
2016 के मुकाबले में बेटर है, लेकिन 2017 के मुकाबले में ज्यादा है। लेकिन उसका एक रीजन ये है कि पिछले बार दीपावली गर्मी काफी टेम्परेचर था, अक्टूबर में पड़ी थी, इस बार सर्दी में पड़ी है। तो इन जनरल सर्दी के टाइम पे नवंबर में के महीने में वैसे थोड़ा सा ऑलरेडी कूलिंग रहता है ना, तो पॉल्यूशन लेवल लेकिन ज्यादा ही रहता है।
सफर की बात से दिल्ली पुलिस के आंकड़े भी इत्तेफाक रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक पटाखे 8 से 10 बजे के बाद नहीं जलाए जा सकते थे और सिर्फ ग्रीन पटाखों को ही जलाने और बेचने का अधिकार लाइसेंस वाले दुकानदारों को दिया गया था। इन निर्देशों के उल्लंघन के मामले में दिल्ली पुलिस ने 500 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज किया।
कल जो क्रैकर बस्टिंग के ऊपर जो था, 8 बजे से 10 बजे के अलावा जिन्होंने पटाखे चलाए, तो उसमें दिल्ली पुलिस ने कल लगभग 562 FIR दर्ज करी धारा 188 IPC में, और प्लस इसके अलावा हमने 72 FIR दर्ज करी एक्सप्लोजिव एक्ट में। एक साल दिल्ली में क्योंकि केवल 300 सर्टिफाइड या ग्रीन क्रैकर ही चलाने थे और केवल 8 से 10 के बीच ही चलाने थे, तो इसलिए कुल मिलाकर ये 634 FIR दर्ज करेगी, जिनमें 398 के करीब लोग गिरफ्तार करके बेल आउट किए गए।
ये थे दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता मधुर वर्मा के शब्द। पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का इस साल पहला फैसला 23 अक्टूबर को आया था। ये फैसला 3 बच्चों की तरफ से कोर्ट में दायर याचिका में सुनाया गया था। फैसले को लेकर केस के दोनों तरफ के पक्ष दोबारा कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल और वक्त की सीमा को लेकर अपने फैसले को और स्पष्टीकरण के साथ दोहराया था। सरोज सिंह, BBC दिल्ली।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
जैसा कि आपको मालूम है कि BBC इन दिनों फेक न्यूज़ पर एक मुहिम चला रहा है, उसी सिलसिले में एक रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं। हाल के दिनों में बार बार ये आरोप सामने आते रहे हैं कि जिस तरह की भीड़ की हिंसा और लिंचिंग के मामले देखे जा रहे हैं, उसके पीछे फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ी वजह है। ऐसे कौन से लोग हैं जो ऐसे ट्विटर हैंडल्स और फेसबुक पन्ने या वेबसाइट चलाते हैं जिन पर फेक न्यूज़ चलाने के आरोप लगे हैं? BBC संवाददाता विनीत खरे ने देश के कई शहरों का दौरा किया और ऐसे कई लोगों से मुलाकात की जिन पर फेक न्यूज चलाने का आरोप है।
आकाश सोनी खुद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा बताते हैं। वो 12 लाख लाइक्स वाले BJP ऑल इंडिया के नाम का फेसबुक पन्ना चलाते हैं। इस पन्ने पर लगातार फेक न्यूज फैलाने का आरोप है। मसलन पन्ने पर केरल में कांग्रेस की रैली में पाकिस्तानी झंडा लहराने की खबर लगी, जबकि वो झंडा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का था। ये वीडियो जिसमें झंडे को गलत तरीके से पेश किया गया, दूसरी वेबसाइट्स पर भी पोस्ट हुआ था। आकाश सोनी कहते हैं,
कभी कभी हो जाती है मिस्टेक। खबर तो हमने हटा दी थी, जिस वेबसाइट ने वो खबर डाली थी उसको हटा दिया था।
इसी फेसबुक पन्ने पर एक दूसरी पोस्ट में जवाहरलाल नेहरू विदेशी महिलाओं के साथ नजर आते हैं। तकनीकी जालसाजी से बनाई गई कई साल पुरानी इस तस्वीर को ऑल इंडिया BJP ने फोटोशॉप नहीं किया। आकाश सोनी,
ऐसी कोई फोटो अभी हमारे संज्ञान हमें तो नहीं है संज्ञान।
आपके पेज पे
एक बंदा और है, वो हो सकता है उसने डाली हो।
कौन है ये बंदा?
हाँ, एक साथ में हमारे चलाते हैं, राजेंद्र जी हैं।
अच्छा,
हो सकता है, बट हमें याद नहीं है कि हमने ऐसी कोई पोस्ट डाली है।
आकाश सोनी फेक न्यूज फैलाने के सभी आरोपों से इनकार करते हैं। हमारी इस बातचीत के बाद हमें इस फेसबुक पन्ने का नाम बदला हुआ मिला। सैद्धांतिक विचारधारा और आर्थिक कारण आकाश सोनी जैसे लोगों को प्रेरणा देते हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो किसी भी राजनीतिक दल से आदेश नहीं लेते। आकाश के मुताबिक उनका मकसद है ऐसी खबरों को लोगों तक पहुंचाना जिसे मीडिया अनदेखा कर देता है, साथ ही मीडिया की मदद से लोगों की भलाई करना। ग्वालियर शहर के केंद्र में है अंशिया प्लाजा, जिसकी तीसरी मंजिल पर है coveragetimes.com का दफ्तर। इस वेबसाइट पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप है। रोहिंग्या समुदाय पर BBC की एक रिपोर्ट में रोहिंग्या लड़की को चंद लम्हों के लिए दिखाया गया। रिपोर्ट में लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन coveragetimes.com पर लिखा गया, इस लड़की के पति के 18 बच्चे हैं, क्या आप ऐसे शरणार्थी को भारत में बसाना चाहेंगे? ये एक फेक न्यूज थी। राजू सिकरवर coveragetimes.com के संपादक हैं।
जैसे आप मान लो इसको फेक मानते हो, तो
फेक मानते
नहीं है, चलो मान लो आप फेक है, तो लेकिन इसकी जो स्टोरी आई थी ना, जो जैसे मान लो बीबीसी वालों ने डाला है, किसी ने डाला है इसको,
उसके बारे में कहानी नहीं थी, एक पासिंग शॉट था उसके,
रोहिंग्या का
आपने भी छापा उसको?
हाँ, मैंने भी छापा उस चीज को।
ये तो फेक न्यूज है ना?
हाँ, ये फेक न्यूज है।
तो इसके लिए क्या आपने आपने माफी मांगी कि भाई ये छप गया है या करेक्शन? ये तो
नहीं, तो इस ये फेक न्यूज है।
राजू सिकरवर ने हमें बताया कि उन्हें ये जानकारी एक सूत्र से मिली थी, लेकिन सारी जानकारी सर्वर से डिलीट हो गई है। राजू के मुताबिक उनका मकसद है चरमपंथ और पड़ोसी बांग्लादेश से आप्रवासन जैसे मुद्दों को प्रकाश में लाना, जिन पर देश का मीडिया ध्यान नहीं देता। राजू कहते हैं कभी कभी उनसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन किससे गलती नहीं होती।
ग्वालियर के बाद अब हम पहुंचे हैं भोपाल शहर। यहां पर हम मिलने आए हैं अभिषेक मिश्रा से, जो वायरल इन इंडिया नाम की वेबसाइट चलाते हैं। इस वेबसाइट पर प्रो कांग्रेस और एंटी नरेंद्र मोदी मटेरियल पुश करने के अलावा फेक न्यूज फैलाने के भी आरोप लगे हैं।
वेबसाइट की एक कहानी में एक कथित अमरीकी सर्वे के हवाले से मनमोहन सिंह को दुनिया का सबसे ईमानदार राजनीतिक नेता बताया गया। फैक्ट चेकर वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने इसे फेक बताया। अभिषेक मिश्रा वायरल इन इंडिया वेबसाइट के संपादक हैं।
मैं तो ये कह रहा हूँ ना, आप साबित तो कर दो भैया फेक कैसे है।
ये फेक नहीं है,
बिल्कुल फेक नहीं है, आप साबित करिए फेक है। क्या वहां से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुआ? नहीं ना, बस साबित करो आप फेक है, बात खत्म हो गई।
ये सर्वे फिर कहां हुआ है? मतलब सर्वे
बिल्कुल वहां जिन्होंने ये बनाया है, जिन्होंने ये बनाया है, जिन्होंने ऐसा कुछ पब्लिश किया, बिल्कुल उनकी जानकारी में बिल्कुल सच है ये खबर। और जो मुझे नहीं मालूम ये हमारी टीम में से किसी ने बनाया है, बट ये बिल्कुल सही है।
कुछ ही महीनों में आम चुनाव होने हैं और वर्चुअल दुनिया में पर्दे के पीछे कई अनजान चेहरे अपने अपने कारणों से अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश में हैं। विनीत खरे, बीबीसी भोपाल।
फेक न्यूज पर जैसा कि हमने बताया बीबीसी एक मुहिम चला रहा है, उस पर नजर बनाए रखिए। आज दिन है गुरुवार का और हम जानते हैं कि आपको इंतजार रहता है अपने खतों के जवाब का, तो आइए सुनते हैं कि आज के कार्यक्रम में किन के खत शामिल हुए हैं।
आपकी राय में आज राजेश जोशी तो नहीं है, तो मैं वंदना आप सबों की चिट्ठियां ईमेल लेकर आई हूं और मेरे साथ स्टूडियो में हैं
सारिका।
बहुत बहुत शुक्रिया सारिका, मैं देख रही हूं बहुत सारे ईमेल हैं आपके हाथ में, तो शुरू करें।
जी बिल्कुल, और हम सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे अखिलेश कुमार के ईमेल से, जिन्होंने लिखा है कि यूं तो आपके सारे प्रोग्राम्स बहुत अच्छे होते हैं, पर मेरी समस्या है जो पाठक के नज़रिए से और एक श्रोता के नज़रिए से मैं महसूस करता हूं, और ये कहना चाहते हैं कि जैसे आप विपक्ष की आवाज़ बन गए हो, आपको इस सरकार में सारी कमियां नज़र आती हैं, और ये भी लगता है जैसे सारी समस्याएं 2014 के बाद से शुरू हो गई हैं।
जी अखिलेश जी, पहले तो ईमेल लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हर आलोचना को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। अगर आप किसी विशेष रिपोर्ट का जिक्र करते तो शायद हम ज़्यादा सटीक तरीके से बता पाते, लेकिन कोशिश यही रहती है। कोशिश क्या, जर्नलिस्टिक जो पत्रकारिता का एक दम तो यही रहता है कि हर रिपोर्ट निष्पक्ष हो, उसमें अगर जो अच्छा काम है जो बुरा काम है वो दोनों ही उसमें नजर आए।
गौतम दत्ता हैं किशनगंज बिहार से, उन्होंने एक ईमेल किया है और उसमें सरोज सिंह की काफी तारीफ की है उन्होंने, और लिखा है कि बीबीसी हिंदी में सरोज सिंह के रूप में एक नए ध्रुव तारा का उदय हुआ है और इनकी आवाज की जादू ने बीबीसी को अपने पुराने दिनों में लौटा दिया है, और उन्हें सुनकर अचला शर्मा और सीमा चिश्ती की याद आ जाती है। सरोज काफी खुश होंगे।
क्या नाम बताया आपने इनका?
गौतम दत्ता है।
गौतम दत्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तारीफ हम सरोज तक जरूर पहुंचाएंगे और यकीनन वो बहुत ही खुश होंगी।
बिल्कुल, और बिहार की एक रिपोर्ट है जिनको और पसंद आई है, हिंदू मुसलमान नफरत की धीमी आंच पर उबलता बिहार पर पंकज प्रियदर्शी की रिपोर्ट, इन्हें बहुत भाई
जी। काफी विस्तृत रिपोर्ट है और काफी मेहनत से वो पिरोई गई है, उसका रेडियो तो था ही था, उसका वीडियो भी था जो लोग वेबसाइट पर देख सकते हैं।
साथ ही गणेश प्रसाद हैं जिन्होंने लिखा है कि वात्सल्य राय द्वारा प्रस्तुत दुनिया जहान में अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध के बारे में सुनकर दुख हुआ, और दोनों देश अपना दंभ और हठ त्याग कर आपस में विवाद को सुलझाएं।
जी, और ये बहुत ही जटिल मुद्दा है, कूटनीतिक मुद्दा है, बरसों से चला आ रहा है दोनों देशों के बीच में, तो जाहिर है ये दोनों देशों के आपस की बात है, पर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो हम वात्सल्य राय तक ज़रूर पहुंचाएंगे। सारिका, मैं देख रही हूँ आज ईमेल ही ज़्यादा हैं, तो हमारे जो चिट्ठी पत्र लिखने वाले श्रोता हैं उनसे माफ़ी चाहेंगे, अगली बार ज़रूर भरपाई करेंगे।
बिल्कुल, और ऐसा ही एक ईमेल और आया है, ये भी बिहार से ही आया है। गुड्डू गौतम लिखते हैं मोतिहारी से कि बीबीसी हिंदी परिवार को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। हम इन्हें भी शुभकामना देना चाहेंगे गोवर्धन पूजा की। साथ ही नोटबंदी का असर आने वाले कुछ वर्षों में होगा और ये कहते हैं कि मेरे जैसे आम लोगों के लिए शुरू में दिक्कत हुई थी पर अब नहीं है। साथ ही ये कह रहे हैं जुबैर साहब की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कि वरिष्ठ पत्रकारों से सिर्फ उसमें बात की गई और उनका तो काम ही होता है सत्ता पक्ष का आलोचना करना, उन्हें आम लोगों से बात करनी चाहिए थी तब सही पता चलता।
जैसा मैंने पहले कहा, हर आलोचना सर माथे पर, और ये बात जरूर आगे से ध्यान में रखेंगे। अगर आपको ऐसा लगा तो कोशिश रहेगी कि आम लोगों की आवाज ज्यादा से ज्यादा रहे।
बिल्कुल। साथ ही ईरान अमेरिका प्रतिबंधों पर भी ये बात करना चाह रहे हैं और इनका भी यही कहना है कि पड़ोसियों से रिश्ते खराब ना हो, ये होना चाहिए और ये अच्छा है भारत जैसे विकासशील देशों के लिए भी।
जी सारिका, इससे पहले कि आप आगे बढ़े मैं एक चिट्ठी पढ़ना चाहती हूँ। ये आई है सीधा कैनेडा से, राजेंद्र सिंह गिल ने, इन्होंने लिखा है कि 2005 से वहां रह रहे हैं और इन्होंने कहा कि मैंने रेडियो सुना और उसमें सारिका सिंह की आवाज सुनी और नई आवाज है और मुझे बहुत ही अच्छी लगी।
तो चिट्ठियां पढ़ते वक्त मुझे अपनी ही तारीफ कर अच्छा लग रहा है।
जी बिल्कुल।
और अभी कुछ ही वक्त हुआ है जब मैं रेडियो प्रेजेंट कर रही हूँ और उम्मीद है कि श्रोताओं को अच्छा लगेगा।
जी
साथ ही एक कुमार गुड्डू का भी मेल आया है और उन्होंने
ये कहाँ से लिख रहे हैं?
ये कुमार गुड्डू भी मोतिहारी से लिख रहे हैं और ये चाहते हैं कि दुनिया जहान में विलुप्त हो रहे जीव जंतु और संकट ग्रस्त आदिवासी समुदाय के जीवन पर भी आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत होना चाहिए खबरों के अलावा।
जी सुझाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इसे अपने पिटारे में रख लेंगे। जब कभी भी मौका लगा अगली बार तो इस मुद्दे को जरूर कोशिश करेंगे आपके सामने पेश करने की।
जी अब एक आखिरी ईमेल पढ़ लेते हैं, नरेंद्र कुमार का है और इन्होंने जगह का नाम तो नहीं लिखा है लेकिन ये लिखते हैं कि बीबीसी हिंदी रेडियो का गौरव है। काफी अच्छे शब्द इन्होंने बीबीसी हिंदी के लिए लिखा है और इन्होंने कहा है कि ये सुबह और शाम बेसब्री से नमस्कार भारत और दिन भर कार्यक्रमों की प्रतीक्षा करते रहते हैं और इन्होंने लिखा है कि नमस्कार भारत में भारत में छपने वाले अखबारों की सुर्खियों से जो कार्यक्रम प्रसारित होता है उनमें पहले की तरह पूर्व तैयारी के साथ सुर्खियों को सुनाया जाए, इसमें स्टूडियो में बैठे हुए प्रस्तुतकर्ता बीच में उनको टोके नहीं, तो ये इनका एक सुझाव है।
जी बिल्कुल जी, हर सुझाव जो है वो गौर करने लायक तो होता ही है और ये जिस बेसब्री से इंतजार करते हैं तो इनसे गुजारिश है कि ये बेसब्री हमेशा बनाए रखें और अब जो है वो समय समाप्त हो रहा है तो जाते जाते सब श्रोताओं को पता बता दें, बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स संख्या 3035 नई दिल्ली 110003। नमस्कार।
हमें ख़त भेजते रहिए। जैसा कि आप बराबर सुनते होंगे प्रदूषण से नुकसान हो रहा है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको प्रदूषण की वजह से जिनकी चांदी कट रही है, तो आइए bbchindi.com पर और पढ़िए उस खबर को। और अब सुनते हैं खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ इंदु पांडे। भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत और पीवी सिंधु ने चीन ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। दोनों खिलाड़ियों ने आज अपने अपने मुकाबले जीत करके अंतिम आठ में जगह बनाई है। इससे पहले महिला सिंगल में वैष्णवी को अपने पहले दौर के मुकाबले में ही हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मिक्स डबल्स में सातवीं सीड मलेशिया के चेन पेंग सुन और गोह लियो यंग की जोड़ी ने 1:03 तक चले मुकाबले में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा की भारतीय जोड़ी को 18-21, 21-19, 21-17 से शिकस्त दी। अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की महिला डबल्स जोड़ी को पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। और फुटबॉल की दुनिया से, भारत के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट आई लीग के 12th सीजन में पहली बार रियल कश्मीर FC सहित कुल 11 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इस तरह से फुटबॉल के जरिए कश्मीर की घाटी में कुछ बदलाव लाने की उम्मीद जगती है। इसके साथ ही फुटबॉल एक्सपर्ट्स को ये उम्मीद है कि भारत की दूसरी टीमें कश्मीर में जाकर के अपनी परफॉर्मेंस जरूर देंगी। फुटबॉल एक्सपर्ट गौस मोहम्मद,
कश्मीर में जाएंगे, श्रीनगर में खेलेंगे, वहाँ दर्शकों का रुझान बढ़ेगा और पागलपन वहाँ फुटबॉल के लिए बहुत है, इसका बहुत अच्छा असर होगा क्योंकि जो भटक जाते हैं वो भटकेंगे नहीं क्योंकि 95% से ज्यादा लोग वहाँ पे खेलों में रुचि रखते हैं। अगर हम वहाँ पे आकर्षित टूर्नामेंट कराएंगे वहाँ के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में उदाहरण ले लीजिए, पहले वहाँ काफी अपसेट रहते थे, आज नॉर्थ ईस्ट का कि ज्यादातर खिलाड़ी देश के प्रतिष्ठित क्लबों में चार पांच खेलते हैं।
रियल कश्मीर और नरोका का मुकाबला 11 नवंबर को श्रीनगर में होगा। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही
और कार्यक्रम खत्म करने से पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बंदूकधारी ने भीड़भाड़ वाले बार में गोलियां चलाकर कम से कम 13 लोगों की जान ले ली है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में संदिग्ध माओवादी हमले में 4 नागरिकों और 1 CISF जवान की मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि ये मौतें एक बस में IED से हुए धमाके के कारण हुई। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस को बर्खास्त किए जाने के बाद इस बात को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं कि अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूसी दखल को लेकर चल रही जांच का क्या होगा। BBC समाचार।
तकनीकी पक्ष संभाला था तिलक भाटिया ने। फैसल मोहम्मद अली पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।